नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर हमला किया, क्षेत्र में व्यापक नुकसान। कतर ने ईरान के राजनयिकों और सेना को जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दिया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 उड़ानें संचालित करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने ईद तक अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया। अमरीका की खुफिया प्रमुख तुलसी गब्बार्ड ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान अमरीका के लिए परमाणु खतरा पैदा कर सकते हैं, और ब्रिटेन देश में मेनिनजाइटिस बी के प्रकोप को रोकने के लिए लक्षित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। और अब समाचार विस्तार से। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर कल ईरान ने मिसाइल हमले किए। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने एक बयान में कहा है कि व्यापक नुकसान होने के कारण आग को काबू में करने के लिए आपात प्रतिक्रिया टीमें तत्काल तैनात की गई हैं। कंपनी ने बताया कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों, सैनिकों और सुरक्षा अधिकारियों तथा उनके कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि ईरान के कर्मचारियों के साथ दूतावास में तैनात सैन्य अधिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी दोनों को कतर अवांछित व्यक्ति मानता है। कतर उनसे अधिकतम 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आग्रह करता है। कतर ने यह भी कहा है कि यह निर्णय ईरान द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने तथा दोहा में हमले की प्रतिक्रिया में लिया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। ईरान में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़े संयंत्रों पर अमरीका और इसराइल ने संयुक्त हमले किए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार असालुए विशेष आर्थिक ऊर्जा क्षेत्र में स्थित गैस प्रसंस्करण संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निशाना बनाया गया है, जिससे साउथ पार्स गैस क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित हुआ है। आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, हालांकि बाद में उन्हें काबू कर लिया गया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद पहला मौका है जब इसराइल ने सीधे ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी क्षेत्र के कई ऊर्जा स्थलों को सीधा निशाना बनाते हुए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के लिए चेतावनी जारी की है। तेहरान ने इस कार्रवाई को पूर्ण आर्थिक युद्ध की ओर एक कदम बताया है। वहीं कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक खतरा करार दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले भी किए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों ने बताया कि हबशान गैस प्लांट और बॉब ऑयल फील्ड की ओर आ रही मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया। सुरक्षा जाँच के लिए वहाँ फिलहाल काम रोक दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने इसे एक आतंकी हरकत और खतरनाक कदम बताया है। वहीं सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी प्रांत की ओर बढ़ रही 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 8 ड्रोनों को नष्ट करने का दावा किया है। रियाद में मिसाइलों का मलबा गिरने से 4 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इसराइल ने पहली बार उत्तरी ईरान पर हमले शुरू किए हैं, जिससे युद्ध और फैलने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के साउथ पार्स प्लांट पर हुए हमले से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस हमले से पहले कोई जानकारी नहीं थी और इसमें कतर भी शामिल नहीं है। आज इस संघर्ष का 19वां दिन है। जानकारों का मानना है कि अगर तेल और गैस ठिकानों पर हमले जारी रहे तो पूरी दुनिया में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और हालात बेकाबू हो सकते हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
इस बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 निर्धारित और विशेष उड़ानें संचालित करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों एयरलाइंस जद्दा और मस्कट के लिए अपनी नियमित सेवाओं को जारी रखेंगी, जिनमें भारत और जिद्दा के बीच 16 उड़ानें शामिल हैं।
एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, हैदराबाद और कोझिकोड से उड़ान भरेगी। मस्कट के लिए 6 निर्धारित उड़ानें संचालित होंगी, जो दिल्ली, कोझिकोड और मुंबई को कवर करेंगी। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया दिल्ली से रियाद के लिए 2 वापसी उड़ानें संचालित करेगी। निर्धारित सेवाओं के अलावा एयरलाइंस संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए 30 विशेष उड़ानें संचालित करेंगी, जो उपलब्धता और स्थानीय परिचालन स्थितियों पर निर्भर होंगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ईद उल फितर के मद्देनजर और सऊदी अरब, तुर्की तथा कतर के अनुरोध पर अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ये घोषणा उस घटना के एक दिन बाद आई है जिसमें अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर काबुल के एक पुनर्वास अस्पताल पर हमले में 400 लोगों की हत्या का आरोप लगाया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने ये घोषणा की है। पाकिस्तान ने जहां ऑपरेशन गजब लिल हक के बीच अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है, वहीं कुछ घंटों बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने रक्षात्मक अभियानों को अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने की जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आक्रामकता की स्थिति में अफगानिस्तान पूरी दृढ़ता के साथ जवाब देगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले की कड़ी निंदा की है और इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि गुतरश ने जोर देकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मरीजों, चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। महासचिव ने ईद के अवसर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी युद्ध विराम का स्वागत किया है और आशा जताई है कि इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। अमरीका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा है कि चीन, रूस और पाकिस्तान द्वारा विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। गबार्ड ने सीनेट खुफिया समिति को बताया कि इन मिसाइलों की संख्या वर्तमान में 3,000 से ज्यादा मिसाइलों से बढ़कर वर्ष 2035 तक 16,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक पेलोड से लैस कई तरह की नई उन्नत मिसाइल वितरण प्रणालियों पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो अमरीका तक पहुंचने में सक्षम हैं। ब्रिटेन के कैंट क्षेत्र में घातक मेनिनजाइटिस बी के प्रकोप के बाद तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण के लक्षणों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने यह अलर्ट उस समय जारी किया जब कैंट विश्वविद्यालय में लगभग 5,000 विद्यार्थियों को लक्षित करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। माना जा रहा है कि यह प्रकोप कैंटरबरी के एक नाइट क्लब से उत्पन्न हुआ। इस प्रकोप में 2 छात्रों के मौत की खबर है और अब तक कुल 20 पुष्ट और संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मृतकों के परिजनों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि ये बेहद कठिन समय है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं बुखार, सरदर्द, तेज सांस, नींद आना, कपकपी, उल्टी और हाथ पैर ठंडे हो जाना। ये गंभीर और तेजी से फैलने वाली बीमारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार सुनिए एक बार फिर। ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर हमला किया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 उड़ानें संचालित करेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमले की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने ईद तक अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया। अमरीका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा चीन और पाकिस्तान अमरीका के लिए परमाणु खतरा पैदा कर सकते हैं और ब्रिटेन में मेनिनजाइटिस बी का प्रकोप रोकने के लिए टीकाकरण शुरू। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।